नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और फिनलैंड के बीच आज नई दिल्ली में पर्यावरण, सहयोग, प्रवासन और गतिशीलता, साझेदारी तथा सांख्यिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्टुब के साथ कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है।
आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फिनलैंड कानून के शासन, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। श्री मोदी ने उल्लेख किया कि भारत यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते से भारत और फिनलैंड के बीच व्यापार, निवेश तथा तकनीकी सहयोग और मजबूत होगा।
2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार हैं।
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रपति स्तूप से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से भारत फिनलैंड संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉ अलेक्सेंडर स्टुब उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देंगे। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थव्यवस्था पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। इसमें 110 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस वर्ष का विषय है संस्कार, दृढ़ता, सामंजस्य, उन्नति। 3 दिन के इस सम्मेलन में विश्व के नीति निर्माता और विचारक 6 विषयों पर विभिन्न प्रारूपों में संवाद करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पटना स्थित बिहार विधानसभा में सचिव के समक्ष दाखिल किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में राज्यसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। नेपाल में नई संसद के चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपना वोट डालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में चुनाव के उत्साहपूर्ण संचालन पर प्रसन्नता व्यक्त की। अन्य राजनीतिक नेताओं में राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी आरएसपी के रवि लामिछानी ने चूचे पार्टी में और आरएसपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालेन ने तिनकुने में अपना वोट डाला। ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल और अमेरिका ईरान के शासन को समाप्त करने की कोशिश करते हैं तो इसराइल के दिमोना परमाणु संयंत्र को निशाना बनाएगा। ईरान की यह चेतावनी इसराइल के विदेश मंत्री इसराइल कार्ड्स के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता इसराइल के निशाने पर होंगे। ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 19वें चरण के तहत मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। उधर इसराइल की वायुसेना ने ईरान पर फिर हमले किए। इसराइल के रक्षा बलों ने तेहरान में ईरानी शासन के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। इससे पहले इसराइल की वायुसेना ने ईरान के इस्फहान और काम में मिसाइल लॉन्चर और रक्षा प्रणाली पर हमला किया था। इसराइल की वायुसेना के विमानों ने ईरान के काम क्षेत्र में इसराइल की ओर प्रक्षेपण के लिए तैयार एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को नष्ट कर दिया। इसके अतिरिक्त इस्फहान में वायुसेना के विमानों पर हमला करने के उद्देश्य से बनाई गई एक रक्षा प्रणाली को भी नष्ट कर दिया गया। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में कल रात न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।